Alhamdulillah. Alhamdulillah, madan kaseeran tayyiban barakatan fi. Wa sallallahu ta'ala ala khayri khalqihi Muhammadin wa alihi sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina maulana Muhammadin nabiyil ummi wa azwajihi ummahatil mu'minin wa zurriyyatihi bi ahli baitihi kama sallaita ala ali ibrahim innaka hamidum majid. Wa sallim tasliman da'iman abadan kaseeran kaseeran. Amma ba'd. Alhamdulillah. Allah ka lakh lakh shukr. Uska karam hai, uska fazl hai. Ke Allah subhanahu wa ta'ala ne ghaflat ke time mein hamare qulub ko apne zikr ki taraf mutawajjih farmaya. اور اس بابرکت رات میں جسے شب جمعہ ہے کل ایک عظیم دن آنے والا ہے اللہ پاک نے بیٹھ کر کچھ دین کی باتیں کرنے اللہ کا ذکر کی توفیق نصیب فرمائی اصول ہے انسان کا کہ جتنی انسان کہ کسی چیز سے خطرہ ہو پریشانی ہو یا یہ سمجھتا ہو کہ اس سے اس کو نقصان پہنچے گا نقصان دہ چیز ہے میرے لیے اس سے مجھے تکلیف ہوگی تو پھر اسی قدر انسان اس چیز سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جتنی زیادہ خطرناک چیز ہوگی اتنا ہی بچنے کی کوشش کرے گا تھوڑے نقصان کی چیز ہے تو تھوڑی کوشش کرے گا اس سے بڑی نقصان کی چیز ہے تو پھر زیادہ کوشش کرے گا بچنے کی تو گویا جس قدر بھی زیادہ خطرناک چیز ہوگی عقل مند آدمی کوشش کرتا ہے کہ میں اس سے بچوں مجھے نقصان دے تو سب سے زیادہ جو نقصان دہ چیز ہم سمجھتے ہیں جس سے سب سے زیادہ بچنے کی کوشش کرتے بھی ہیں موت ہے موت سے زیادہ خطرناک کوئی چیز نہیں ہے بیماری سے بھی اس لیے بچتے ہیں کہ موت نہ آ جائے ایکسیڈنٹ سے بھی اس لیے بچتے ہیں کہ موت نہ آ جائے حادثات سے بھی اس لیے بچتے ہیں کہ موت نہ آ جائے تو نتیجن یہ ہے کہ موت جو ہے وہ سب سے زیادہ خطرناک ہے ہمارے نزدیک اس موت سے بچنے کے لیے زہر ہماری کوشش میں بہت زیادہ ہوتی ہے بہت ہی زیادہ ہوتی ہے کوئی ایسی چیز جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں مار دے گی یا ہم مر جائیں گے ہم کبھی اس راستے کو اختیار نہیں کرتے دریا بہہ رہا ہے کبھی اس کے نزدیک نہیں جائیں گے کیوں کہ کہیں پاؤں نہ پھسل جائے اور ہم ڈوب جائیں پتہ ہو کہ یہاں بہت خطرناک چیز ایسے ہوگا تو مار دے گا نہیں یہاں نہیں خطرہ مول نہیں لیتے بچیں یہاں سے بچتے ہیں نا بھائی لیکن موت سے بھی زیادہ خطرناک ایک چیز ہے موت سے موت تو کچھ بھی نہیں اس کا آگے وہ اتنی خطرناک چیز ہے اتنی خطرناک چیز ہے اتنی خطرناک چیز ہے کہ موت تو یہ ہے کہ مر گیا آدمی ختم لیکن وہ تو موت کے بعد کام شروع ہوتا ہے اس کا موت کے وقت عذاب قبر میں جانے سے سخت عذاب حشر پہ اٹھے گا تو سخت عذاب حشر میں کھڑا ہوگا تو عذاب اس راست سے گزرے گا تو عذاب جن جن راستوں سے گزرے گا آخرت کے عذاب 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 نتیجہ آخر یہ کہ جہنم کی آگ میں پھینک دیا جاتا ہے سنتے ہیں قرآن میں پڑھتے ہیں حدیثوں میں علماء سے بات سنتے ہیں تم مجھے بتائیں اس سے بڑی کوئی خطرناک چیز ہو سکتی ہے یہاں تک لے جانے والی کون سی چیز ہے मोतक लाने वाली चीज तो समझ ये बीमारी है, कैंसर हो गया, फला हो गया, हार्ट अटैक हो गया, मौत तक ले जा रही है। लेकिन इन तमाम मराहल पे इंसान को खतरनाक मराहल से गुजारने वाली वो क्या चीज है, उसका क्या नाम है? जब इस पर सोचा हमने, जितने इस बारे में सोचते हैं कि मर जाएंगे, इसके बारे में हम कितना सोचते हैं कि कितनी खतरनाक चीज है। मौत तो है ही मौत, जाना ही है। लेकिन उसके बाद ये चीजें हैं, ये जो अजाब बन जाएगा कब्र के, हश्र का अजाब बन जाएगा, ताकि जहन्नुम के, जहन्नुम के दर्जे हैं, हर दर्जों में पहुंचाने वाली वही चीज है, जहन्नुम पहुंचाने वाली वही चीज है, बदतरीन जहन्नुम की जगहों में ले जाने वो चीज है। तो मुझे आप सोचने बताएं, बात कर रहे हैं, मुजाकरा कर रहे हैं, तकीर नहीं कर रहा आपसे, तो दावत दे रहा हूं सोचने की। आप भी सोचें, मैं भी सोचता हूं, कोई तकलीफ नहीं है, मेरी बातें सुने, मैं आप कन्विंस कर रहा हूं, फैसला आपने करना है। अल्लाह ने तौफीक दिया बैठने की, तो कोई मुफीद तो होना बैठना, कुछ बैठ के बातें करके चले जाए, जिक्र कर, ऐसी बात नहीं। अल्लाह पूछता है, एक एक वक्त का हिसाब लेगा कि तुझे वहां तुझे बैठाया था, तेरे में अकल नहीं थी कोई ऐसी बात करता जो तेरा काम बनता, क्यों जी? आखिर बिठाया है, सब शाह पढ़ के चले गए, 9 बज गया, घरों में चले गए, कुछ सो रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई गप्पे मार रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ चाय पी रहा है, हमें क्यों बिठा दिया मस्जिद के अंदर? हमारे से अल्लाह क्या खास ताल्लुक था? हमारे भी ख्वाहिशात हैं, जाए यार चाय पिए, कड़क चाय पिए, चलो भाई बिस्किट खाएं, चलो यार फला कुछ करते हैं, टेक अवे खाएं यार, ये तो बड़ा रश का टाइम है यार, सुबह से काम किया है, बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं, होना चाहिए था ना। लेकिन नहीं, वो कौन सी ताकत से भगाता हुआ मस्जिद में बिठा गया, सब लोग चले गए, हम बिठा दिए, नहीं अल्लाह का जिक्र करो। ये है एक चीज जिसको उपजन कहते हैं, ये अल्लाह की मोहब्बत की दलील है। हम कहते हैं अल्लाह किससे मोहब्बत करता है, हमें कैसे पता अल्लाह मोहब्बत करता है? ये है दलील कि अल्लाह तुझसे मोहब्बत करता है, और अब तुझे भी चाहिए कि तू भी अल्लाह से मोहब्बत करे। कितनी ज्यादा है, पता, मैं अपनी बात कर रहा हूं, मुझ जैसे गुनाहगार आदमी, अकल ही नहीं, शोर नहीं, और गुनाह से भरे हुए आदमी, मेरी क्या ताकत कि मैं आके यहाँ बैठ के जिक्र शुरू कर दूं और इशा के बाद बैठ जाऊं, थकवा भी हूं, मेरे में कोई ताकत है? आप तो कहने का आदमी मैं सोच भी नहीं सकता कि ऐसा आदमी भला किस तरह उसके में बैठ जाओ, बातें करे और आखिरत की बातें करे। अल्लाह पाक ने कैसा इंसान पर फजल फरमाता है कि ये सब क्या है, उसकी मोहब्बत की दलील है। लेकिन दावत देता है कि जब तुझसे मैं इतनी मोहब्बत करता हूं, बेवकूफ, इतने तो गंदा होने के बावजूद मैं तुझे इतने बड़े अमाल की तौफीक दे रहा हूं, तो चल तू भी तो ना मुझसे मोहब्बत करना। कितना नाशुक्र है इंसान, मुझे बताया, कितना नाशुक्र है। चाहिए तो हमें यह है कि जब अल्लाह ऐसी मजलिस में हमें बिठाए बैठे, तो वहां से खाली ना जाए, अल्लाह को राजी करके जाएं। कैसे राजी करें? कि कोई नेक अमल लेकर जाए। आज कमाल ये है, कमाल ये होगा कि हम में से जितने लोग बैठे हैं आज इस साथ खाली ना जाएं, बल्कि हम अल्लाह का शुक्र करें और कोई नेक अमल लेके जा रहे हैं आप। और नेक अमल इस वक्त मैं बताऊं आपको, तो सबसे बेहतरीन नेक अमल क्या होगा कि अल्लाह का जिक्र सीख के जाएं, जिक्र की मजलिस से वहां आपने भेजा है। अगर किसी दावत में भेजते हैं, दावत खा के जाते, चिकन खा के जाते, पुलाव खा के जाते, बिरयानी खा के जाते, तो इस मसले में भेजे हमें, तो यहां पाए किस लिए? कि मेरा जिक्र करें। जब जिक्र भी भेजा है तो जिक्र सीख के जाओ, अल्लाह का शुक्र हो जाएगा। उठ के चले गए, हाथ झाड़ के, नहीं कुछ नहीं लगेगा, सुभान अल्लाह, मैंने तो दस्तरखान बिछा दिए थे, सुभान अल्लाह हमदी के, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह के, हसबुनल्लाह के, ला हौला वला कुव्वत के, ये वो कलाम से फरिश्ते तरसते हैं करने के लिए, मैं तुझे करा दिया। तो बेवकूफ इंसान, तू इतनी भी कदर नहीं कि तू जिक्र सीख के जाता। जैसे मुझे भी जिक्र सिखा दी, मैं भी अल्लाह का जिक्र करूंगा, इस मजलिस का हक तो अदा कर दूं मैं, शुक्र तुम लाजी धन सुभान। आज आप जिक्र सीख के जाएंगे शुक्र में, कल आपको अल्लाह जाकिर बना के उठाएगा आखिर तक। अरे सुभान, चलिए फिर आते हैं उस बात पर जो मैं कर रहा था, जिस हमारा मुजाकरा जारी है, जो सिर्फ बात हमने कर ली है।
بات ایک ہی کرنی ہوتی ہے، میں نے میں تو نہیں مارتا، اسی بات کو لے کے چلوں گا، اینڈ اسی بات پہ میں نے کرنا ہے، جہاں سے شروع ہوا ہوں نا اسی بات پہ میں نے چلنا ہے۔ کہاں سے چلے تھے کہ بھائی خطرناک چیز یہ تھی نا، تو اس چیز وہ کیا چیز ہے خطرناک جو عذاب قبر بنتی ہے، عذاب جہنم بنتی ہے، برباد کرتی ہے، اس چیز کا کیا نام ہے؟ نام پتہ ہوگا تو بچیں گے نا، عقل ہوگی تو ہم بچیں گے نا، یہ اتنی خطرناک چیز ہے، ان تمام چیزوں سے بچتے تھے، ان سے بھی تو بچے ہم۔ وہ ہے گناہ، گناہ ہے، گناہ ہی ہے جو عذاب قبر بنتا ہے، گناہ ہی جہنم میں لے کے جاتا ہے، گناہ ہی ہے جو آپ ہر جگہ اور مجھے آپ کو برباد کرے گا، گناہ ہے جو اللہ کو ناراض کرتا ہے، گناہ ہے جو اللہ سے دور کرتا ہے، گناہ ہے جو انسان کے اندر پردے ڈال دیتا ہے دلوں کے اوپر، گناہ ہے جو انسان کی سیاہی ڈال دیتا ہے، یہ گناہ ہے۔ تو مجھے بتائیں بھائی، جو ہر چیز سے خطرناک چیز ہے تو اس سے ہمیں کتنا بچنا چاہیے؟ اب ہم ذرا اپنا تجزیہ کریں تھوڑا سا، کہ ہم کتنی کوشش کرتے ہیں اس سے بچنے کی۔ موت سے بچنے بڑی کوشش کرتے ہیں، ہارٹ اٹیک ہوگا بھی تو بھاگے جائیں گے، ہارٹ اٹیک تو نہیں ہو گیا، ہمارا فلاں کا ٹیسٹ لے لیں، ہمارا فلاں ٹیسٹ لے لیں، ہمارا فری مشین چلا دیں، کہیں ہو نہ گیا ہو، حالانکہ یقین نہیں ابھی ہوا ہے، کیونکہ موت سے ڈر ہے۔ کبھی اتنا بھی سوچا کہ ہم بستر پر لیٹ کے سوچیں کہ میں کوئی گناہ تو نہیں کر کے آیا آج، اللہ کو ناراض کر کے تو نہیں آیا، اللہ کی اطاعت چھوڑ کے تو نہیں آیا؟ کچھ پتا، ایک بات تو سمجھ آئے گی کہ بہت بےوقوفی اگر ہم یہ کام نہیں کرتے۔ حتی الامکان ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم گناہ سے بچیں، گناہ بہت خطرناک چیز ہے۔ کتنی خطرناک چیز ہے کہ اللہ کے نبی بتائیں گے، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، مسند احمد کے اندر حدیث ہے، میں آپ کا ختم پیش کرتا ہوں۔ کتنے بڑے صحابی تھے، قاتب نبی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، کسے؟ مجھے اور آپ کو، یہ خاص خیال رکھنا اس دنیا کے اندر، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، کسی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھنا، ہر بس گناہ کی بات کی ہے، یہ نہیں چھوٹا ہے، نہیں، جو گناہ ہے وہ گناہ ہے، گناہ سے بچانا، کیونکہ ہر گناہ جو ہے، سنیں کتنی بڑی بات ہے، گناہوں سے بچانا کیونکہ ہر گناہ جو ہے وہ اللہ کا غضب لے کر آتا ہے۔ ہر گناہ جو ہے، آنکھ سے کر لیا، ہاتھ سے کر لیا، منہ سے کر لیا، سوچ کے کر لیا، چل کے کر لیا، بیٹھ کے کر لیا، دیکھ کے کر لیا، اشاروں سے کر لیا، پیٹ سے کر لیا، ہاتھ، جو بھی گناہ ہے، اس گناہ کا کام کیا ہوگا؟ اللہ کی نہیں فرمایا، وہ گناہ جو ہے وہ غضب لے کر آتا ہے۔ غضب کا پھر اندازہ لگا لے انسان، غضب ہوتی کیا چیز؟ دیکھو حدیث، اللہ سبحانہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، اتنی بڑی قوم کو بنی اسرائیل خود فرماتے ہیں، حدیث ہے بھی مسند احمد کے اندر حدیث، اللہ خود فرما رہے ہیں کہ دیکھو گناہ نہ کرنا، نہ فرمانی نہ کرنا، اگر تم نے میری اطاعت نہ کی اور تم نے نہ فرمانی کی اور گناہ کیا تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ، اور اگر تم نے میری اطاعت کی، اللہ کہتا ہے اگر تم نے میری اطاعت کی تو میں راضی ہو جاتا ہوں تم سے۔ کس چیز سے راضی ہوتا ہے؟ اطاعت سے راضی ہوتا ہے، کہ اگر تم نے میری اطاعت کر لی تو میں تجھ سے راضی ہو جاؤں گا، اور جب میں راضی ہو جاتا ہوں، سنیں کیا حدیث ہے، کتنی پیاری حدیث ہے، کہ جب میں راضی ہو جاتا ہوں تو پھر میں برکت عطا کرتا ہوں، اور جب میری برکت آتی ہے تو اس برکت کا معاملہ ہی ہوتا ہے کہ اس برکت کی انتہائی نہیں ہوتی۔ اللہ، اس برکت کی انتہائی نہیں ہوتی جب میری رضا کے ساتھ وہ برکت آ جائے۔ کس چیز سے آتی ہے؟ اللہ کی اطاعت سے، گناہ نہ کرنے سے۔ और सुनते अगर तूने गुनाह किया, अगर तू गुनाह करता है तो गुनाह के बाद ज्यादा किसी किस्म का भी गुनाह कर रहे हैं, नमाज पढ़ के गए, हज करके हैं, उम्र करके हैं, सब मामूल करके गया, हम गुनाह करते कोई फर्क नहीं पड़ता, छोटा गुनाह है, लेकिन याद रख लें गुनाह उड़ा के रख देता है तमाम नेकियों को, सफाई कर दे, गजब होगा तो हम नेकी कहां आएंगी और नमाज कहां जाएगी, खुद जाएगा कि जिस वक्त गुनाह आ गया सफाई फेर देता है तो साफ कर देता हर चीज को। फरमाया जिस वक्त गुनाह आ गया तो मैं क्या होता है, अल्लाह मैं नाराज हो जाता हूं, जब मैं नाराज हो जाता हूं तो फिर मैं लानत भेजता हूं उस पर, अल्लाह जरा देखें नमाजों का हाल, देखें हमारी बेपर्दगी का हाल, देखें हमारे शिकलों का हाल, देखें हमारी जिंदगियों का हाल, देखें हमारे घरों का हाल, देखें हमारे माशरे का हाल, देखें अल्लाह माफ कहते हैं, फिर मैं उस पर लानत भेजता हूं। हदीस गलत हो सकती है, ये किसी मुफ्ती की बात नहीं कर रहा हूं कि आप उस पर क्रिटिसाइज करना शुरू कर दें, ये किसी आलिम की बात नहीं कर रहा हूं, ये किसी पीर की बात नहीं कर रहा हूं, ये किसी बुजुर्ग की बात नहीं कर रहा हूं, ये कौन बात कर रहे हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल, तो खुद इसी लेकर रहा हूं, एक में अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं और एक में खुद अल्लाह फरमा रहे हैं, इस पे क्रिटिसाइज जो करेगा, जो इनकार करेगा वो काफिर है, उसको यकीन नहीं अल्लाह पर, गलत मैं नहीं मानता इसको, ऐसे क्यों हो सकता है, ऐसे क्यों होगा, क्यों होगा, याद रख ये काम बहुत खराब हो जाता है इंसान का, वो ईमान से निकल जाता है आदमी सिंपली, कि उसको यकीन नहीं है। हमार तो ईमान का एक ही स्टैंडर्ड है, याद रख एक ही स्टैंडर्ड है कि अल्लाह की किताब पर ईमान ले आओ, अल्लाह के रसूल की बातों पर ईमान ले आओ, पास जिसके अंदर ये चीज नहीं है वो मुसलमान मोमिन ही नहीं होता, उसमें ईमान नहीं है, वो ईमान से फारिग है, चाहे कितनी बातें फिर करता है ईमान से फारिग। तो ये हदीस सुनते हौसले हदीस सुननी चाहिए कि कहां से आ रही है ये बात, कोई मुफ्ती फकीर नहीं बता रहा है, ये मुस्लिम हदीस के अंदर ये किताब है जो पेश की जा रही है, उससे मुतफिक होते हैं हदीसों से, इनकार करने की जरूरत फिर वही करेगा जो ईमान से फारिग है, अल्लाह माफ फरमाए। तो क्या फरमाया कि जब कोई नाफरमानी करता है, घर में करे, बाहर करे, बीवी से करे, बच्चों से करे, दोस्त से करे, मोहल्ले से, किसी नाफरमानी के अल्लाह की तान, तो ये नहीं देखता कि ये बड़ा आदमी है, पढ़ा है, बहुत बुजुर्ग है, ये तो अल्लाह वाले हैं, ये तो हजरत साहब हैं, नहीं 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 नहीं, गुनाह का ये स्टैंडर्ड नहीं है, हजरत साहब वो होते हैं, पीर वो होता है, आलिम वो होता है, मुफक्किर वो होता है, शेखुल हदीस वो होता है जो गुनाह नहीं करता, मन तो साफ है, वो तो छुट्टी हुई है उसको बेचारे की, वो तो भाई कुछ नहीं, चट के चट, याद रखें एक चीज, बड़े एक अजीब नुक्ते आज समझाने मैंने आप बात करनी है, अस्त को समझाने क्या आपके साथ बात करनी इसके बारे में, दिल में जो आती है मैं आपको बता देता हूं, इंशाल्लाह आपने की सुनी नहीं हुई ये बात पहले, और हदीसों से बात होगी, ये नहीं कोई गप मारो मैं सारी, अभी तक हदीस से हो रही नहीं बात हो रही ऐसी है। तो क्या हुआ, सुनने गुनाह कितनी बड़ी चीज है कि जहां गुनाह होगा उस घर में गजब होगा, जहां गजब होगा वहां लानत होगी, और मतलब जहां लानत होती है तो सात पुश्तों तक मेरी लानत चाहती है वहां पर, अल्लाह के वास्ते गुनाहों से बचो अपने घर वालों को, अंदाजा लगाए ये आर्टिफिशियल खुशहाली है जो हम देख रहे हैं, वक्ती है, कोई ताल्लुक नहीं इससे, जैसे वक्ती सर्दी आ गई, वक्ती गर्मी आ गई, कभी नजला हो गया, ये वक्ती चीजें हैं, ये दायमी चीजें हैं जो अल्लाह बता रहे हैं, लानत दायमी है जो चलेगी सात पुश्तों तक, जिनके असरात होते हैं, वह क्या कि सात पुश्तों तक उसकी औलाद नाफरमान हो जाती है, उनको हिदायत नहीं देते अल्लाह ताला, वो काफिर हो जाते हैं, मुनाफिक हो जाते हैं, वो दलीलें देते हैं, वो कुरानों को छोड़ते हैं, वो हदीसों को छोड़ते हैं, सात पुश्तों तक कि उसने गुनाह किया था, उसने अल्लाह की नाफरमानी की थी, सात पुश्तों तक। आगे बात समझ रहे, सबसे खतरनाक चीज मौत नहीं है, सबसे बड़ी हमारे नजदीक क्या चीज खतरनाक, मौत है। लेकिन मौत खतरनाक नहीं है, सबसे खतरनाक चीज क्या है, गुनाह है। अब अगला क्वेश्चन, मौत से बचने के ताल्लुक, अस्पताल, डॉक्टर, रास्ते हैं ना, जो सबसे बड़ी चीज है मेरे भाई, गुनाह से बचने के ताल्लुक क्वेश्चन जवाब दे मुझे। जवाब ही नहीं, एकदम कोई बचने की कोशिश नहीं की, इसका मतलब अस्तग़फ़िरुल्लाह। अगर बचने की जिसने कोशिश नहीं, दलील से कहता हूं कि जिसने इस गुनाह से बचने की कोशिश नहीं की, वो गुनाहगार है, गुनाहगार है, गुनाह से बचे ही नहीं, इसके अंदर गुनाह है, किसी ना किसी लेवल में फंसा बैठा है वो, शायद दुनिया उसको किसी नजर से देखे, बड़ा ऊंचा देखे, लेकिन मैं आपको कुरान है, जो बचे ही नहीं गुनाह से, उसने कोशिश नहीं गुनाह से निकलने की, तो यकीनन किसी एक आध नहीं, किसी गुनाह फंसा हुआ है। जो जानता है भजन गुना है, वो कब निकलेंगे, वो गुना कब निकलेगा, मौत तो मर गया, गुना की असलियत कब निकलेगी, मौत के बाद निकलती है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो जहन में आ जाए दोस्तों। चले आगे बताए, बचेंगे कैसे, ये क्वेश्चन है ना, बताए। हो सकता नहीं जो इतना बड़े खतरनाक चीज हो उससे बच, आज बच क्या भाई, गुनाह ना करो, गुनाह बहुत बड़ी चीज है, गुनाह कुरान तबलीग ये बच गए गुनाह से, है ही नहीं, बच नहीं सकता, मुझे बचा के दिखा दें किसी, क्योंकि अल्लाह इसमें रखे ही नहीं बचना, सुनाना इसलिए है कि अलर्ट हो जाओ, तुम कोशिश करो, लेकिन इससे गुनाह से बच नहीं सकता। मैं अपने झूठना बोला करो, तुम कितना झूठना बोल, तुम शर्म नहीं आते झूठ बोलते हो, मुझे बताया कितना झूठ से बच जाएगा, नहीं बचेगा, कोई नहीं बचा सकता गुनाह से, क्यों कि ये रास्ते ही नहीं है, ये इंफॉर्मेशन दे सकते ही आप, मैंने सुन, अच्छा टॉपिक है ना, ये आपको इंफॉर्मेशन देती है, कुरान इंफॉर्मेशन देता है, हदीसें देती हैं, मौलाना देते हैं, सब चीते हैं, बुजुर्ग देते हैं, बताते हैं, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, छुटता नहीं। मानो जुम्मे के बाद तो सारी माशाल्लाह मुत्तकी बन के, नहीं कोई वली निकल रहा है, कुतुब निकल रहा है, गौस निकल रहा है, दाढ़ी रख ली सब ने माशाल्लाह, इमाम पहन लिए और सुनो तो भी चल रहे हैं, जैसे थे बल्कि उससे बदतर होकर निकल जाते हैं, कैसे कहते, उसी मौलाना साहब को जिस बेचारा बता रहा है उसी में तनकीद करते बाहर निकलेंगे, देखो ये ख्याल देखो ये क्या बातें करता है यार, पता ही कुछ नहीं, अक्सर 70% जो है ना जुम्मे से जब बाहर निकलेंगे ना उस मौलाना की शामत आई होगी बेचारी, इसको समझ नहीं है तो यही बातें करता है ये, बस इनका यार इनका तो काम ही ये ऐसे ही करते रहते हैं, छोड़ा यार अपने काम पे लोगो तुम, क्यों कि वो ये नहीं कि माश, ये नहीं किस मौलाना ने बेचारे ने गलत बात की, उसने सही कुरान पढ़ा है, लेकिन तरीका जो है गुनाह निकालने का वो कौन बताएगा आपको, तरीका चाहिए अपने भाई, दही तो ले लिया आपने, मैंने लस्सी पीनी है, जब तक लस्सी बनाने का तरीका नहीं आएगा तो लस्सी पियेंगे कैसे हम, गोश्त ले आया, प्याज भी आ गई, सब कुछ आ गई भाई, हम सालन बनाएंगे कैसे नहीं, जब तक हमें तरीका नहीं आएगा बिरयानी कैसे बनाएंगे, तरीका चाहिए नहीं चाहिए, मुझे बताएं आप, गुना इससे नहीं छूटेगा। आए था आपकी चीज बताता हूं, बहुत जबरदस्त, देखें ये बहुत बड़ी चीज है गुना, क्योंकि सारे हमारे डिपेंड इस पर करता है, ये जहन्नम गुनाहों की वजह से बनी है, अगर गुना ना होते तो जहन्नम ना होती, फिर जन्नत ही होती, फिर गुना जहन्नम का क्या ताल्लुक था, तो एक पोर्शन ही खत्म हो चुका होता, कुरान में जिक्र ही खत्म हो चुका होता उसका, नहीं समझे बात, कितनी बड़ी बात है। अच्छा गुना क्यों होता है, कम ऑन दिस साइड, तो आप चलते हैं नजर आ देखने के लिए कि आखिर ये वबाल आया कैसे, होता क्यों उससे, क्यों हो जाता है, मैं मोमिन हूं, मुसलमान हूं, कुरान पढ़ता हूं, हज करता हूं, उमरा करता हूं, तबलीग पे जाता हूं, सब कुछ करता हूं, यार गुना क्यों हो जाता है मुझसे, आए बताता हूं। बात समझ आए कबूल कर लें, नहीं है तो छोड़ दें, मैं आपको बता देता हूं। गुनाह के स्टेजेस हैं, गुनाह एकदम नहीं होता। क्या है, जानी एकदम जना नहीं करता है, कातिल एकदम इंसान को कत्ल नहीं करता है, किसी लड़की से इश्क करते आदमी एकदम नहीं करता है, क्योंकि बुरा फेल करता है एकदम नहीं करता है, बुरे काम में जब जाते एकदम नहीं करता है, गुनाह एकदम नहीं होता। क्यों होता है, क्या प्रोसीजर्स का? सबसे पहले जब गुनाह होता है, याद रखें, गौर सुननी मेरी बात, अच्छा, सबसे पहले वसवसा आता है, फर्स्ट स्टेज ऑफ गुनाह क्या है, सबसे पहले स्टेज वसवसा, यहां से शुरू होता है। अब क्योंकि वसवसा जब आते हैं हमारे जहन के अंदर, वजूद हमारा बनाया हुआ, दिमाग बनाया हुआ, वसवसा आ गया। अब हमें क्योंकि वसवसे का पता ही नहीं, इसको कैसे कंट्रोल करें, इसके साथ हम क्या करें, देन इट इंक्रीज। जाहिर जब किसी चीज को आप रोकेंगे नहीं, पानी को आप रोकेंगे तो पानी बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, वसवसा आ गया, हमने उसको रोका नहीं वसवसे को, तो वसवसा इंक्रीज होगा अंदर ही आप, वसवसा आ गया किसी बुराई का, छोटा वसवसा, आपने उसको रोका नहीं, एकदम कन्वर्ट होगा, पे कौन आगे चल, वो एकदम वसवसे कन्वर्ट होता है किसमें, ख्याल में। वसवसे से ज्यादा मजबूत होता है ख्याल, समझ आ रही बात? अब उसमें ताकत आ गई, उस वसवसे के अंदर ताकत आ गई है, वो अब कमजोर नहीं, वसवसा कमजोर होता है खत्म। अगर हमारे पास उस वक्त तरीका होता तो हम उसको डक लेते, उधर ही स्टॉप करते कि हमारा तरीका नहीं है, ख्याल नहीं किया उसका, हम काम बस हम सोचते कोई नहीं, हर वक्त जहन में हमारे वसवसे चलते हैं, याद चलते हैं। अच्छा क्यों, अब जब वसवसे को हमने रोका नहीं तो क्या बना, जरा ताकत पकड़ी उसको, हम क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, ख्याल। बोले माशाल्लाह, अब ख्याल क्योंकि वसवसे बाद ख्याल से कन्वर्ट हो गया, ख्याल को तो हम फिर उसको हम कैसे रोकें, ख्याल को, ख्याल ही है जी, चलो चल ख्याल, जब ख्याल को हमने नहीं रोका तो ख्याल अगले टर्न करता है, वो बढ़ता है, अल्लाह अकबर, उससे ज्यादा ताकत पकड़ता है, वो क्या बन जाता है, इरादा, नहीं समझ। वसवसा चला था कहां पर, आया ख्याल पे आया, जब ख्याल ने कुछ रोका नहीं, रुकावट नहीं आपने डाली, वो टर्न हो गया किस पर, इरादे पर। कौन सी स्टेज आ गई है, तीसरी, ख्याल आ गया, और ख्याल तो फिर उस ताकत से बढ़ गया, उस ख्याल से, ख्याल जो बढ़ी, ख्याल से बढ़ गया इरादा, कहते हैं इरादा करो इरादा करो, इरादा तो आगे बढ़ गया, इरादा जब बना ताकतवर बन गया तो एकदम बस बस हुआ, चलो जना करें, उस रोका नहीं, फिर ख्याल आ गया कि चलो ये इस तरह हो सकता है, फिर ख्याल जरा हुआ इरादा, चलो कर दे लेते हैं, कौन रोकता है, ये हर बुराई को सिस्टम चलता है, इस तरह याद रखें, पहले कभी नहीं करता आदमी, बहुत कमजोर होता है वसवसे में, डरपोक होता है, गुनाह की तरफ डरता है, नहीं जाता, किधर आ गया, इरादे पर पहुंच गया, जब इरादे पर पहुंचते हैं वहां कोई रुकावट नहीं, इरादा कन्वर्ट होता है, फिर अल्लाह अकबर, वो किधर जाता है, अल्फाज में आ जाता है, शक्ल अख्तियार कर जाता है, किस में आ जाता है, वर्ड्स में आ जाता है, फिर अपने उस गंदी बात का, इस शाम से गंदा होता है, गंदी बात का इजाद फिर जबान से करने लगता है, गुस्सा होगा तो गाली देगा, झूठ होगी तो गिबत करेगा, फ्रॉड होगा तो, फिर वो लफ्जों में आ रही है सारी चीजें, अल्लाह हो, कितना बड़ा गुनाह अख्तियार कर गया वो, क्या बन रहा है ये सारा, क्या बन रहा है, गुनाह, इस तरह बनता है गुना, ये गुना बन रहा है, बिरादा बन गया, پھر کیا بنا؟ الفاظ آ گیا. اللہ جب الفاظ آ گیا تو اس نے طاقت پکڑی, اس الفاظ شروع کر دیا, اس نے طاقت پڑی تو وہ الفاظ کیا بن گئے؟ اعمال بن گئے انسان کے, جو لکھے جاتے ہیں. اعمال کا ہمیں پتہ ہے کیا بنا, الفاظ کیا بن جاتے ہیں؟ یہ جھوٹا ہے, یہ غیبت کرتا ہے, یہ زانی ہے. اعمال بن گیا انسان کا. اللہ اعمال بن گئے, جب انسان کے اعمال بن گئے تو اب کیا بنا؟ نتیجہ بن گیا. اللہ جس درجے کا وصف کے ساتھ آپ نے گناہ کیا ہوگا, کرتے 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 وہ اس استاد پہ آ گئے کہ اس کا بھی نتیجہ یہ ہے کہ اس کو یہ سزا ملے گی جہنم میں, اس کو یہ سزا ملے گی جہنم میں, اس کو یہ سزا ملے گی جہنم میں. یہ سب کیا بن گیا؟ گناہ. سبحان اللہ, یہ ہے سسٹم گناہ آنے کے, جو ہم گناہ ہم جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیسے سسٹم کیا. اچھا یہ آج کی بات نہیں ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ابتدائی سے سب باتیں وہ سمجھا دی تھی حضرت آدم صاحب کو پیدا کر کے. جب اللہ نے کہا اس درخت کے پاس نہیں جانا تو سب سے پہلے کیا چیز تھی بولے؟ عالم بیٹھے ہیں. ہاں سمجھ گئے, اب دلیل ہوگی میری بات کی؟ گپ تو نہیں نا, ہوگی دلیل. آدم صاحب کو کیا پتا تھا؟ اچھا یہ بتل گیا کہ وسوسہ کریٹ کرنے والی کیا چیز ہے, وہی جو ہمارا ازلی دشمن ہے, اس نے اللہ سے کہا تھا میں اس کو نہیں چھوڑوں گا. یہ طاقت اللہ نے اس کو دے دی کہ جا ان کے اندر تو یہ کام کر, پھر کر لے, جا کر لے. یہ تو مانگی نہیں طاقت, تو اس نے سٹارٹ وہاں سے کیا کہ سب سے میں پہلے وہیں سے شروع کروں جہاں سے جنریشن چلے گی, تاکہ ساری جنریشن یہ کام کرے گی. اس نے جا کے سب سے پہلے آدم السلام کے ساتھ یہ کام کیا. کیا ڈالا دوستوں سے بات کیا ہے؟ وہ سارا پروسیجر آدم السلام کے ساتھ ہوا, آخر میں کیا ہوا؟ اعمال ہوا, اعمال کو نتیجہ بن گیا. نتیجہ یہ ہوا کہ ہم سب دنیا میں بیٹھے ہیں, یہاں بیٹھے ہیں. یہ سبق سیکھنا چاہیے. ہم کہتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں, کیا پڑھتے ہیں ہم قرآن میں بتائیں. جس کو یہی پتہ نہ چلا کہ ابتدا ہماری کیا ہے, حضرت آدم صاحب تشریف لائے تو ہمیں سب سے پہلا میسج جو ہمیں دیا گیا وہ یہ دیا کہ خبردار گناہ سے بچنا ہے. جس طرح آدم السلام سے ہو گئی خطا تو تم سے بھی یہ خطا ہوگی. کام وسو سے شروع ہوگا اور جا کے اینڈ کس پر ہوگا؟ کھانے پر شروع ہو گیا, درخت کھا لیا تھا. تو کون داؤ مجھے بتایا, داؤ سے کہتا ہوں کون شخص ہے جو کہتا ہے کہ میں گناہ نہیں کرتا, میں یہ ہوں, میں وہ ہوں, میں فلاں ہوں؟ بالکل بکواس. گناہ سے وہی بچ سکتا ہے جو طریقہ اللہ نے بتایا ہو. سبحان نہیں بس, اور یہ اللہ والے ہی ہیں جنہوں نے یہ کام کی. یہ تحقیق ہے اللہ والوں کی. سبحان اللہ, نبی جو آتے ہیں وہ یہی بتانے آتے ہیں. نبی جو آئے ہیں وہ کیا بتانے آئے ہیں؟ گناہوں سے بچو. ہر نبی ہر دور میں آیا اس لیے آیا ہے کہ گناہ سے بچے. جب وہ قوم نہیں مانتی تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو ختم کر دیتے ہیں. پورا قرآن بڑا ہے, ثمود, نوح, موسیٰ, جس قرآن میں آپ دیکھیں نبیوں کے آپ قصے دیے ہیں, اللہ نے صرف ایک ہی ذکر فرمایا ہے کہ گناہ نہ کرنا, گناہ کا نتیجہ یہ ہوگا میں تم اس طرح ختم کر دوں. کبھی سوچے اس بات پہ ہم جب ہم قرآن پڑھتے ہیں؟ سمود کا قصہ پڑھ لے بس, نوح کا قصہ پڑھ لے ٹھیک ہے, شعیب کا قصہ پڑھ لے ٹھیک ہے, وہ ایک روٹین میں آ گئے. یہ پتہ نہیں کہ یہ کیا وجاہت ہیں اللہ تعالیٰ جو اتنے ہمیں اتنے انبیاء السلام کے واقعات بتائیں. اور پھر کہا کل سیرو پھر لڑ دی, جا کے دیکھو کیسے انتظام ہوتا ہے, زمین کا انتظام میں کیا کرتا ہوں. یہاں تک اللہ نے دعوت دی ہے کہ جاؤ سیر بھی کیا کرو, دیکھو کہ تاکہ تم اس بات کا یقین ہو جائے کہ گناہ کرنا کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے, بے بردگی کرنا چھوٹی چیز نہیں ہے, بے حیائی کرنا دوسری چیز نہیں چھوٹی چیز نہیں ہے, گناہ گانے بجانے چھوٹی چیزیں نہیں ہیں. دنیا بدلے گی, یاد رکھنا تھا کہ یہ میری دنیا ہے, میں ان کو سسٹم میں بدلاؤں گا. بڑے بڑے گناہ آتے چلے جائیں گے, ابھی تو کیا کچھ ہونے والا ہے. امام مہندی بھی آئیں گے, دجال بھی آئے گا, قصے بڑے لمبے چوڑے کہانی. لیکن ہمارے ایک کام اللہ نے دیا ہے کہ جس دور میں تم چلے جاؤ تم نے کام ایک کرنا ہے کہ कि मेरी इताअत के ऊपर रहना, गुनाह नहीं करना। तुम शैतान हमें आमालों पे लगा देते हैं और हमारे जमीरों को खुश कर देता है। कभी अल्लाह को नाराज करके कोई उमरा हुआ है? कभी दाढ़ी काट के रोजे मुबारक के खड़ा कोई हो सकता है? कोई वहां खड़ा हो के पिक्चरें बना सकता है? कोई वहां खड़े हो के टेलीफोन सुन सकता है? म्यूजिक चल सकते हैं? आज तो यही हो रहा है, रोजे मुबारक पर खड़े होकर ये बातें होती हैं। क्या खाना कब के तवाफ पे ये बातें हो सकती हैं? तो अल्लाह ताला ने ये खोला हुआ है, अभी गजब नहीं आ रहा, लेकिन उसने मिसालें दे दी कि मेरे गजब आएंगे आएंगे। इसी वजह से याद रखें, कोई गुनाह इंसान करता है वो गुनाह कभी नहीं मिटता। आप 70 साल उसको छोड़ दें, 80 साल छोड़ दें, लेकिन जो गुनाह किया होगा आपने, उस गुनाह का बदला अल्लाह जरूर देता है। याद नहीं जाता सिवाय एक चीज के, अल्लाह ने उसका इंतजाम किया है, सिवाय एक चीज के उस गुनाह को खत्म करना चाहते, सिवाय एक चीज के। क्या कितना रहीम करीम है हमारा रब नहीं होता है? जना कर ली, चोरी कर ली, डागो कर ली, बेपर्दगी कर ली, हराम खोरी कर ली, सब कुछ कर लिया, सब अल्लाह किताब में लिखा हुआ है। हत्ता कि कोई नहीं जानता आप अपनी बीवी के साथ क्या ज्यादती कर रहे हैं, कोई नहीं जानता अपनी बच्ची के साथ क्या ज्यादती कर रहे हैं। वहां कौन खड़ा है? कोई भी नहीं है। आप भी चौड़े हुए होते, कौन है यहां पे करने वाला, जो चाहे कर दो, मुझे कौन देखता है। वक्त के फिरौन बनाता है इंसान, जब ताकत में आ जाता है सब कुछ कर जाता है। लेकिन याद रखना, गुनाह मैंने बताया ना, गुनाह तो गुनाह है, गजब आ गया, लानत आ गई, बर्बादी आ गई, कभी हटने वाली चीज नहीं। दाढ़ी काट के खुश तो हो जाते हैं हम, हो जाए खुश, पुरखे उतार के खुश थे हो जाए खुश, हराम खा के सूद खा के खुश तो हो जाते हैं, हो जाए खुश, लोगों को गाली निकाल के तंज मार के बेहूदगियां करके खुश तो हो जाते हैं, हो जाए हो जाए। देखिए जहां तक याद रखिए, गुनाह की सजा से आपने बच गए, और सजा वो ऐसी सजा देगा कि जिसका हमें तसव्वुर नहीं है कि ये सजा है। ये नहीं कि आपको जब ये करते फिर नहीं, नहीं नहीं इसका नहीं, वो तो उसका अपना एक मियार है सजा का, उसका एक मियार है सजा। तो अगर गुनाह से बचना चाहते हैं, याद रखिए अल्लाह ने ऐसा ऐसा कमाल कर दिया, कितना से बड़ा बड़ा गुनाह आपने कर लिए, छोटा से छोटा गुनाह कर लिया, अगर आपने उसको रखे रखा गजब, और बड़े से बड़ा भी आपने गुनाह कर लिया, लेकिन आप चाहें तो खत्म कर सकते हैं। कैसे? तौबा कर लें। तौबा कर लें, नाम निशान खत्म हो जाता है। तौबा किस तरह होती है? तीन चीजों से होते हैं, नदामत से माफी मांग लें अल्लाह से, सुभान अल्लाह कितना करीब, नदामत से माफी मांग लें अल्लाह से, उसे वादा कर लें अभी खत्म करता हूं काम, और तहिया कर लें अंधा नहीं करूंगा। अल्लाह लगता तूने ये कह दिया, इन अल्लाह गफूर रहीम, सिर्फ तुझे माफी नहीं किया, सारे गुनाह जमा करके उसकी नेकी में तब्दील कर देते। जहां जैसे हम जिंदा हैं आज, सिर्फ आज कुछ ये लाइफ है, इस वक्त तक, अब इस वक्त मैं कर सकता हूं, इस वक्त आप कर सकते हैं, वी डोंट नो हम बाहर जाए जिंदा भी रह सकते हैं, कल का मामला नहीं चलेगा। इतनी खतरनाक चीज पे इतनी ढील देनी, इतनी ढील देनी, अब कुरान ने कह दिया कि तौबा के तुम्हें ऐसे ऐसे दरवाजे खोले हुए हैं, यह जाकुल मोमना जुबानियों को, अगर तुझे कहीं मेरा दोस्त नजर आ जाए, अल्लाह नजर आ जाए, तो मत जान छोड़ना, फौरन उसके पास जाकर कहना मुझे तौबा करा दो। उस तौबा का अलग ही नाम अल्लाह का बताता हूं, तुम पूरे सूरह मुत्तहिर का इनाम बताए। वो तो तू तो जो करेगा छोड़, वो तौबा नहीं है। अगर तुझे कोई अल्लाह और मैं अल्लाह रखे हैं कहीं नजर आ जाए, कहीं महफिल मिल जाए, उसकी कुछ हो जाए, तो पहला काम उससे कहना, उससे दरख्वास्त करना, पूरी आयत याहन जाकर मरते जबाल यहां रखा, मुझे बैत करें, अल्लाह जुशकन्ना भी अशाइया कि मैं ये नहीं करूं, बैत कर दें, फबला हुनर करें। उसके बाद क्या कि इतना बड़ा इनाम दिया है कि जिस वक्त बंदा इस तरह किसी अल्लाह वाले के हाथ में बैत करेगा, तो मदीने के अंदर अल्लाह के नबी उसके लिए दुआ फरमाएंगे। अल्लाह कहे कि दुआ कर उसके लिए, दुआ अपने नबी से कह रहे हैं कि बोलते में तौबा कर रहे हैं मस्जिद में बैठकर, जब जुम्मा पे बैठा है और बैठा है एक शख्स था अल्लाह वाला, उसने तौबा कर ली तो कुरान कह रहा है अल्लाह के नबी जा आप तो उसके लिए दुआ कर। कितना बड़ा इनाम है बताया, फिर खुद बोलता है कि इस शख्स ने माफी मांगी है मेरे नबी तू ही मां, उसके लिए कह रहा है माफी मांगता है इन्नल्लाह गफूर, मैं तो अल्लाह हूं तो मैं छोड़ दूंगा, फिर क्या मैंने माफ भी किया और रहम भी कर दिया। नहीं करते हम तो, ये सब कुरान की चीजें मैं आपको बता रहा हूं, इट्स ऑल दैट। हम अल्लाह वालों को कुछ और समझते हैं, पता उनके मकसद ही हमारा मकसद नहीं, हमारा अल्लाह वालों का मकसद यही है कि हमें गुनाह से बचाते हैं, हमें तौबा कराते हैं, हमें अल्लाह से मिलाते हैं। और तमाशा दूसरा वो अल्लाह वाला नहीं करता है, बाकी सब तमाशे हैं, ये करो फला करो ये, उसका कोई ड्यूटी नहीं किसी किस्म की दूसरी। जब भी अल्लाह वाला कोई आएगा, अल्लाह का वली आएगा, वो तो पूरी दुनिया में इनकलाब ले आता है इन तीन चीजों से, सुभान अल्लाह, तौबा करा देता है, जिंदगी बदल जाती है, तो अल्लाह अल्लाह से मिला देता है। कितनी बड़ी बात है, उसका ये काम है। हो नहीं सकता किसी अल्लाह वाले के पास नियत के साथ आदमी जाए और ये नियत हो, मेरा सुना देंगे नियत ये हो रजा इलाही आखरत, इंशाल्लाह पहली निश्त में तीनों चीजें लेके चला जाता है शख्स, तो भी कर लेते हैं अल्लाह को राजी भी कर लेते हैं, गुनाहों की माफी मिल जाती है उसको। हम तो हजारों चीजें लेके जाते हैं अल्लाह वाले के पास, ये काम कराएंगे, ये दुआ कराएंगे, दफला कराएंगे, तो ये होगा तो वो होगा तो ये हजार किससे कहानी बोले सुभान अल्लाह। इसी बात हो रही है नहीं हो रही, मुफीद है तो बात तो खत्म नहीं है, बात तो यहाँ हुई है कि भाई गुना गुना से बचो, ये हुआ ना अभी तक, ठीक है ना, गुना का मैं तरीका बताया क्यों गुना होता है, फिर तो एक बात रह गई है बचें कैसे, सुभान अल्लाह। हाउ सेफ, अल्लाह ताला इसका क्या तरीका है कैसे गुना से बचो, कुछ सुने नहीं आता कैसे बचो, कुरान पढ़ते हैं तब भी नहीं बचते, फिर भी वसवसा चल रहा होता, आला होता नहीं हो रहा था, नमाज पढ़ते हैं फिर भी हम गुनाह से नहीं बचते, जो काम करते हैं गुनाह से नहीं बचते, क्या कर। अल्लाह के नबी ने कह सकता मैं जो रहमत लाने में आया किस लिए हूं, ये तो रहमत देने आया हूं तुम्हें, इसी महीने में तशरीफ लाए हैं आप इसलिए आए, ये है रबी अव्वल, धूम धड़क के नहीं लाए, इस मैसेज के लिए है कि आओ रबी अव्वल आ गए, आप तौबा करो तौबा करो, और जो मैंने बताया उस तरीके से अपने गुनाहों को खत्म करो, लेकिन ये कोई काम नहीं करता, ये बिलखसूस मैंने अल्लाह से दुआ की रबी अव्वल में जब तक मुझे ऐसी बातें बता कि इस महीने का हमें फायदा पहुंचे, ताकि अल्लाह राजी हो, अल्लाह का रसूल राजी हो कि वाकई इस महीने से उन्होंने फायदा उठा लिया, इसकी नस्बत से बात कर रहा हूं मैं आपसे। अल्लाह के नबी ने तो बताया इसके बारे में, अल्लाह मजल वसाफिस कल्बी खशती का जिक्री का, बड़ी हदीस आपने पढ़ी मुझे मकरा बैठे, अल्लाह साफ कर भी क्या ना क्या क्या अल्लाह ये वसवसे जो ही नहीं निकल सकते, अल्लाह कहता है मैं इंतजाम करता हूं किससे निकलेंगे, जिक्र अल्लाह, क्योंकि वसवसे लाने वाली कौन चीज है, शैतान है, और शैतान ने अल्लाह के सामने खड़े होकर कहा मुझे इजाजत दे मैं नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मैं तुझे इजाजत देता हूं, लेकिन याद रखना इजाजत तो मिल गई ताकत मिल गई, लेकिन उसको इससे बड़ी ताकत दूंगा मैं, वो मेरा जिक्र होगा जो मुसलसाम को बुलाया ना अल्लाह ताला ने पहाड़ कलीम बात की सब कुछ दिखाया समझाया, तैयार हो गए कि हाँ अब काम कर, ये काम क्या कि फिरौन जो इसको खत्म करने हो, ये तो इतना बड़ा काम फिरौन से मैं अकेले लड़ूंगा, सुभान अल्लाह। जब किसी मिशनरी को अल्लाह वाला जाता है तो उतना ही होता है, उसको टारगेट दी जाती है ये पूरा मुल्क तेरे लिए काम कर इसमें जाके, ये क्योंकि कराने वाला अल्लाह के साथ होती है, अल्लाह गुड फिरौन से कहा चलो भाई कहता है अल्लाह तो ठीक है तू बात तो कर रहा है लेकिन ना मैं बोल सकता हूँ, मैं बात कर सकता हूं, फिर वो मार देगा मुझे, मैं क्या करूं। अल्लाह ने तुझे डंडा दिया, मैंने ये किस लिए दिया, उठा डंडा। डंडा उठा लिया, ठीक है जी, क्या कि जो करेगा वही करेगा ये काम। उस वक्त तो पता नहीं था, इससे नबी का डंडा था ना, सुभान अल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को तो सिर्फ डंडा था, मैं नबी की तो उंगली ऐसी थी कि चांद को दो टुकड़े कर दिए। नबियों की शान है। तो क्या वो डंडा उठा डंडा, जो काम करेगा करेगा, चलो ठीक है जी। फिर भी वो ताकत नहीं आ रही थी, हाथ डाल, हाथ डाल चमक गया, किसी ये देख ये भी बहुत ऊंचा काम करेगा, अब ठीक है चल रेडी हो जाने के लिए। कहता नहीं अभी नहीं, क्यों, इन्हें बोल नहीं सकता। जिसे कहते हैं कितना बड़ा मिशन पे जाना था ना आदमी, कुछ छोटा ही बात, इन्हें मैं बोल नहीं सकता। कहता ठीक है, क्यों क्या चाहिए, कहते कोई एक और दे दो मेरे साथ आदमी। कहता ठीक है चलिए, हारून है ना तेरा भाई, इसको चल इसको भी नबी बना दिया, सुभान अल्लाह, ये भी नबी, चल इसको ले जा। अब दो हो गए, ठीक है अब तो चलो चलो, डंडा भी आ गया, सब कुछ आ गया। कहता बात सुन, ये सब कुछ तुझे मिल गया लेकिन अभी भी कंप्लीट नहीं है तू। बोला तने याजी करी, अगर तुम्हें काम भाग कामयाब होना है तो एक चीज का ख्याल रखना, ये सब कुछ काम उस वक्त होगा जब तू मेरा जिक्र करेगा वहां सास। भला था नहीं आज, और ये एक जगह नहीं, अल्लाह ने कई जगह कुरान अपने नबियों को फरमाया ये बात, ये जिक्र है। हां अल्लाह साहब कर भी खशियत ही का जिक्र ही का, कि इस शैतान से वसों से उसे लड़ने के लिए जो गुनाह तुम्हारा पैदा करता है, जहां से गुनाह की हर गुनाह की जन्म होगी, गीबत की, चोरी की, जना की, हर गुनाह की जन्म वसवसे होती है। तो अगर तुमने वसवसे को रोका तो बढ़ के क्या बन जाता है, वो अमल बन जाता है, इसमें आपको बताया। तो तुम्हारा काम यह कि वसवसा जिस वाय उसी वक्त तुमने उसको रोकना है। ये कैसे रोके, जिक्र अल्लाह, इसलिए अल्लाह वाले इस दावत देते हैं इंसान। अल्लाह साहब कभी क्या कहे, कभी खशियत को जिक्र, जब जिक्र करेगा तो तीन चीजें पैदा होंगी, खशियत पैदा होगी, हिम्मत हवाया, हिम्मत पैदा होगी, हवाया फितर दो, और क्या होगा कि तेरी जो ख्वाहिशात होंगी वो गंदी ख्वाहिशात तेरी नेक ख्वाहिशात में तब्दील हो जाएंगी। सुभान अल्लाह, कैसा क्लू दिया मेरे रब ने, अल्लाह सब कर भी खशियत को जिक्र का हिम्मत हवा फीमा तहब हुआ तरफा, जिक्र करेगा और उसी वक्त जिक्र शुरू कर दिया। कुरान कहता है कई जगह पर कि जब उनके दिल में कोई ऐसी बात आ जाए, परेशान कुछ हो, तो फौरन अल्लाह का जिक्र करते हैं, पलट जाते हैं अपनी तरफ से। क्या क्या बताइए कुरान ने बात, गुना हो नहीं सकता कि जिस वक्त वसवसा आ रहा गाली कर दे, फना कर दे, तलाक दे, इसको ये कर दे, चोरी कर ले, अमीर हो जा, गरीब हो जा, उसके पैसे खा जा, जब ये वसवसा आ रहा हो फौरन अल्लाह का जिक्र शुरू कर, कसरत के साथ, जैसे जमाना गंदा हो उसी बार एक तस्वीर से नहीं फना होना पड़ता है फिर जिक्र के अंदर। कोई कहता जिन आ गया, कोई भूत आ गया, कोई पागल हो गया, कोई ये हो गया, कुछ नहीं है, शैतान है ये, शैतान है, ना जिन है, ना भूत है, ना पागल है, डिप्रेशन कुछ नहीं इंसान के अंदर। जितना बड़ा शैतान हो, शैतान हो एक तो नहीं है ना, हर किस्म के शैतान। अल्लाह साहब कर भी खुशी, कहता है एक काम का जिस वक्त वसवसा आए फौरन जिक्र शुरू कर दो, जिक्र के साथ तीन ताकतें पैदा हो जाएंगी। नंबर एक, खौफ आ जाएगा अल्लाह को, जहां खौफ आ जाए काम कर सकते, कुछ होते हैं खत्म ठंडा, ताकत आ जाएगी तेरे उस काम को छोड़ने के लिए। ख्वाहिश है क्या कि तेरी गंदी ख्वाहिशात जो है उसको तू तब्दील करके नेक ख्वाहिशों में तब्दील कर देगा। जना का ख्याल आ रहा है, जिस वक्त तुमने जिक्र किया तो उस जना को छोड़ के अल्हम्दुलिल्लाह तुझे हज रुकने का स्वभाव आना शुरू हो जाए। कौन कराता है जिक्र, तो पता क्या चला असल चीज क्या है, जिक्र है जिसे। अब हम कुछ जिक्र इसलिए तो नहीं करते बुजुर्ग हो जाए, फला हो जाए, फकीर बन जाए, ये बन जाए, जिक्र की जमात फला, क्योंकि जिक्र इसलिए होता है, जिक्र तो लाजिम मर्जूम है हर इंसान के लिए, चाहे किसी दर्जे पर हो।
और जो इंसान जिक्र नहीं करेगा, शर्त यह मैं करता हूं किसी ना किसी गुनाह के अंदर फंसा हुआ है, फंसा हुआ है। जाकिर के बगैर किसी का गुनाह रुक नहीं सकता। एक जाकिर होगा और जिक्र भी जो इस तरह करे जैसे अल्लाह ने बताया है, अपनी मर्जी का जिक्र नहीं हो सकता। देखेगा कहते हैं ये दवा खाएंगे तो आप सही हो जाएंगे, लेकिन दवा आप वैसी खाएं जैसे डॉक्टर ने आपको बताई है, जितने दर्जे पे दी है, इस कैपेसिटी की आपको दी है, तब जाकर दवा असर करती है। एकदम बीमार हो गया, सही नहीं हो रहा था, बढ़ती हुई बीमारी बढ़ गई, डॉक्टर पास गया, उसके बात सुनो यार तुम कैप्सूल मैं तुम्हें दिया था तुम खाते हो, मैं यहाँ खाता हूँ, किस तरह खाते हो, मैं जी आपने दो किए थे मैं एक खाता हूँ। कहते ठीक कैसे हो, मैं किसी को शायद एक से सही हो जाऊँ, तो अब एक से नहीं होगा तुम्हें 500 डोजे का तुम्हें कैप्सूल में देगा। तो ये है मसला कि जब तक अल्लाह ने कहा या अहले जनाब उसको जिक्र कसीरा तो सब भी हो बुकन असीरा, खुद बता रहा है कि मेरा जिक्र करना तो वसवसे से दूर करने कैसे करो, कसरत के साथ करो। कसरत से मुराद क्या है कि तस्वीर या मुंह से नहीं, किसी अल्लाह वाले से दिल का जिक्र सीखो। दिल करता है कसरत से, हाथ नहीं करते, हाथ थक जाएंगे आप जिक्र करते, तस्वीर करते, कभी तो ये तस्वीर चलती रहती है, पता नहीं कर गया रहा हूं, सोते में आप तस्वीर नहीं कर सकते। तो इसके लिए जिक्र कसीर जो हुक्म आया क्या है, दिल का जिक्र सीखो, अल्लाह वाले के पास जाएंगे आपके दिल को जारी कर देगा और दिल चलना शुरू हो जाएगा। इंतजाम तो पूरे किए, जिक्र जारी, वसवसे कहां से आएंगे, आप आएंगे शैतान तो है ना, लेकिन वो आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे, आप उस अमल तक पहुंच नहीं सकेंगे। 6 स्टेजेस हैं, आप स्टेज रुक जाएंगे, आप तजुर्बा करके देखें, जिक्र करने वाला हमेशा रुका होता है, पैसी तो तस्किया शीट बनती। इसलिए हमारे मुरीदों के अंदर जो जब शेख कोई काम देता है, याद रखें जिस शेख का जो कुछ शायद अपना कोई काम देता है, कि जो मुरीद होते हैं जिनको अपने शेख पे यकीन होता है और पता होती है सही बात है कुरान हदीस पे यकीन करते हैं, तो फिर वो वैसे ही करते हैं जैसा शेख बताता है। एक इंच उससे इधर होंगे उनके उनको उनको पता ही नहीं कि एक इंच होना यह कि वो असल में लान से खत्म हो रहे हैं, उनको कोई फायदा नहीं पहुंच रहा। मैंने जो जिक्र शीट आपको दी है कि अल्लाह का जिक्र के लिए शीट करें, तो ये कोई मुझे जाती फायदा नहीं, कोई तमाशा नहीं करा, इसलिए दिए कि बिस्मिल्लाह ये एक ऐसा इलाज है कि जिससे आपके गुनाह खत्म होने शुरू हो जाते हैं। और इस मैं आपको सब बता रहा हूं कि मेरे मुरीदों में सिर्फ उन्हीं को तरक्की है, उन्हीं को तरक्की है, वही फलापर हैं, वही सही काम कर रहे हैं, जो मेरे कहने के मुताबिक अमल कर रहे हैं, और जैसे मैंने कहा है शीट करें वो शीट कर रहे हैं, जो नहीं कर रहे वो बिल्कुल उनको कोई मेरे से फायदा नहीं है। जिक्र से लेकिन जिक्र नहीं लेके जाता आदमी, मैं आपको बता दूं ये बात, ये आप सुन लें, तसव्वुफ के उसूल बता रहा हूं आपको, जिक्र से आपको फायदा नहीं होगा, जिक्र तो सभी करते हैं, जिक्र आपको मंजिल तक लेके नहीं जाएगा। जिक्र है क्या, जिक्र वो है एक इलाज, और शेख जो चीज बता दे वो जिक्र है। मैं कहता हूं मौलाना उठो उठ गए, ये जूते सीधे किया करें यार सारे जाके, ये जिक्र है, आला दर्जे का जिक्र है, मुझे पता है कि इसके नफ्स को मैंने मानना है, इसको अल्लाह से मिलाना है, ये कर तो जिक्र तो मैं दूंगा हजार ही हजार कर जाएगा, लेकिन इसका तकब्बुर नहीं निकलेगा, तकब्बुर नहीं निकलेगा, अल्लाह से मिलेगा, क्या उठो जिक्र या आप जूते या मौलाना साहब जूते साफ कर देगा, कोई जिक्र तो करता हूं, ये इसका जिक्र है, उसे तू जिक्र ना का छोड़ पर तू यहां जूते साफ कर, अल्लाह हो वो लाख जिक्र करने वालों से बुलंद हो गया। यकीन न उस बात पे जो शेख के पास गया था, शेख पे जिसपे एतकाद नहीं होगा, अपने शेख पे एतकाद ना हुआ, यकीन ना हुआ, मोहब्बत ना हुई, खिदमत ना हुई, वो बेकार वक्त जय कर रहा है भाई, बस उसे लिए बैठे खतरनाक चीजें लिए बैठे, वो जिक्र तो काम नहीं करता किसी को नहीं, मैं बहुत सी चीजें दिखाता हूँ शेख जिक्र नहीं देते, उसके ने लंगर चलाया मेरा, निजामुद्दीन औलिया जब गए बाबा फरीद के पास, उनको जिक्र दिया था, उनका जावे तो जिक्र से भांजा कर जावे तो मेरा लंगर चला दिएगा, उस लंगर ने फना कर दिया था रात में, कुछ नहीं किया उन्होंने, और कमाल जो था शेख का हुक्म कैसे माना उसने, अब बताए कई साल लंगर चलाते रहे, कांटे जिसे होते ना कांटा बन गए, माई बहन थी उनकी,
उसने देखा मेरे बेटे को क्या हुआ, चीखने लगे क्या कर दिया इसको तूने, क्या हुआ तूने, कहता कुछ नहीं तू खाने, कहता नहीं क्यों नहीं खाता, कहते मुझे हुक्म सिर्फ लंगर देने का था, खिलाने का नहीं बात किया है। एतकाद है, शेख के पास जाओ, एतकाद लेके जाओ, मोहब्बत लेके जाओ, खिदमत, क्योंकि तुम उस शेख के लिए नहीं जा रहे, अल्लाह को पाने के लिए जा रहे, वसीला है वो। कुरान को जो पकड़ो चूमने के लिए, कुरान वसीला है अल्लाह को पाने के लिए, कि सारे वसीले हैं, मंजिल सबकी कौन सी है, अल्लाह, कोई है बीच में नहीं आता, सिर्फ अल्लाह है, बाकी सब वसाइल है, सब वसाइल है। किसी को इस वसीले से पहुंचना है, हजरत फरमाते थे कुर्बान जाओ, कहते ये नहीं है एक, एक, एक रास्ता नहीं है, किसी को इस वसीले से पहुंचाता है, किसी को इस वसीले से पहुंचाता है, किसी को इस रास्ते से पहुंचाता है, रास्ते बहुत है, मंजिल एक है। अच्छी बातें हुई आज तो भाई, अगर काम करना है कल को मेरे से शिकायत ना करना, अगर मेरे कहने के मुताबिक चलेंगे, जिक्र जो चीज शेख कर रहा है वो जिक्र है, तू के हमारा जिक्र मंजिल नहीं है, जिक्र मकसूद नहीं है, मैं बार जिक्र मकसूद नहीं है, जिक्र महमूद है, मकसूद नहीं है, मकसूद अल्लाह है, और मकसूद वो होगा जिससे जिक्र आपको, आपको शेख जो दे दे वो मकसूद हो गया, वो उससे आपको अल्लाह मिल जाए। नहीं समझी बात, तो बस ही करें जैसे मैं करता हूं, जो करेगा पाएगा, जो नहीं करेगा गाय खोएगा, मुझे जोर लगाने की क्या जरूरत है, मेरा काम तो है बताना, लोगों को समझाना, अब जो समझी नहीं तो मैं क्या करूँ, अकल ही नहीं है, क्योंकि तकब्बुर होता है, गरूर होता है, फजूल बातें होती हैं, हजारों चीज़ें होती हैं, यकीन नहीं होता है, अतमाद नहीं होता है, अकाद नहीं होता, कुछ भी नहीं मिलता है कुछ। भाइयों जब हाथ पकड़ो तो जिक्र बात सुन, जब किसी का हाथ पकड़ो ना अल्लाह वाले का तो उसमें गुम हो जाओ, बस एक बड़े मकसद के लिए आप आए, ये तो जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है अल्लाह को राजी करना, इस मकसद के लिए हम भी डंडियां मार रहे हैं, हम भी ढकोसे नहीं मार रहे हैं, नहीं ये तो वैसे ही है, असल काम तो इस तरह बनेगा, नहीं ये तो ऐसे असल उम्र में काम बन जाएगा, असल तो हाय हाय पता है किसी अल्लाह वाले के शेर है, कितना प्यारा शेर है, मुर्शिदा दीदार बाहू लखो राजो लखो करोड़ों हज्जा हूँ, वो कहते हैं हज बाहू बहुत बड़े एक बुजुर्ग गुजरे अल्लाह सुल्तान बाहू बहुत जबरदस्त, कहते तुम तो हज उमरे करते तो मुझे अपने मुर्शिद का दीदार लाखों करोड़ों हजों का सवाब देता है, एक दफा शेख की ज्यारत करता तो लाखों करोड़ों हज का सवाब मुझे मिल जाता है, क्यों अल्लाह की तलाश में है, उसको एतकाद है अपने शेख मुझे अल्लाह मिलेगा इससे, ये रास्ता है मेरे लिए, वसीला है, जादूफी वसी अल्लाह खुद कहते वसीला तलाश करो तो मेरे तक पहुंचने के, मकसूद नहीं है शेख, पता नहीं है, पूजना नहीं है, उसके पीछे नहीं जाना, वो तो एक वसीला है, जब वसीला है तो वसीले के पीछे पड़ दो, फिर एक मुकाम ऐसा होता है कि वसीला गायब हो जाता है, तू होता है और अल्लाह होता है, फिर एक वसीला है, लेकिन अल्लाह कहते पर इस वसीले पे फना कर अपने आप को, मेरे तक पहुंचने की बहुत मुश्किल है तेरा, समझ आ रही मेरी बात, मेहनत करो मियाँ, जिंदगी बहुत तेजी से जा रही है, मौत बहुत करीब है, कल ठंडे के ठंडे गुजरे कुछ भी नहीं, आते भी हो, बैठते भी हो, बैठते भी हो, सुनते भी हो, सब कुछ करते हो और करते नहीं हो, भाई हो वैसे ही करो, एग्जैक्ट जो मेरे मुंह से बात निकल जाए वैसे ही करो, और ये भी सोच रहे हो कि किसी को कुछ कह दिया, किसी को कुछ कह दिया, उस दूसरे को ना देंगे, आप अपनी सोचने के मुझे क्या कहा मैं वही करूंगा, और वो भूल भी जाए शेख तो कहें हजरत आप ही ने तो कहा था, कहते बिल्कुल कहा था, बिच करता रहे ठीक है, क्योंकि क्या बात है, ये भी सुन ले कि जब कोई मरीज आता है उसकी जो इस्लाह करते हैं वो अल्लाह ताला करते हैं, वसीला शेख होता है, तो खुद उसके दिल के अंदर अलका फरमा देते हैं, इसको ये कह दे वो कह देता है, वो करना शुरू कर देता है, शेख तो कहता है बेचारा बस ये नसीहत कर दो, उसको ये नसीहत कर दो, उसकी करना शुरू हो जाता है, क्यों वसीला है, तो अल्लाह बस सामने रखा एक चीज, उसमें अल्लाह की तरतीब है ना, ये असबाब से चलते हैं ना, तो कुन कहे तो सारी ठीक हो जाए, नबी नबी आने की जरूरत थी,
قرآن بھیجنے کی کیا ضرورت تھی کہ اللہ میں یہ طاقت نہیں تھی کہ ہم چیزا کر دیتا. نہیں, اس کا کھیل ہے, سبحان اللہ, تو اس کا کھیل ہے. ہم اس کے مطابق چلنا چاہیے. تکبر نکالیں, غرور نکالیں, فقر نکالیں, فقیر بنیں فقیر. یاد رکھیں حضرت عبد القادر جیلانی, پیرانا پیر غوث پاک, سردار تمام یہاں پہ مشائخ کے, پوچھا حضرت, حضرت یہ بتائیں کہ اللہ تک مجھے آسان طریقہ بتا دیں, آپ بتا سکتے ہیں؟ کہتا بہت آسان طریقہ تھی, بہت آسان طریقہ. اللہ فرمایا تو اپنے آپ مٹی ہو جا, اپنے آپ کتے سے بتر بنا لے, کتے سے بتر بن جا. کہہ تو دیا شیخ نے, آزمائش بھی آ گئی پریکٹیکلی. حق گزرے تو ایک شرابی بیٹھا تھا, شراب کی بوتل رکھی ہوئی ہے اور شراب کی بوتلیں رکھی ہوئی ہیں, بیٹھا ہے شراب پی رہا ہے. ارے عبد القادر, تم علی ہو, کتنا کتنی جماعت ان کے ساتھ کو, کتنے مقام کے ولی. اب دیکھیں پریکٹیکل ہو رہا ہے, رک گئے. کہتے ہاں کیا بات؟ کہتے عبد القادر تمہیں کہ اللہ رحم کرے گا. ہے عبد القادر, اسے پھر کام اللہ تجھ پہ کرم کرے گا. پھر کیا اسے, ہے عبد القادر کہ اللہ قدیر ہے. پھر چوتھی دفعہ سے, ہے عبد القادر, وہ تھوڑے مار کے رونا شروع کر دیا. عبد القادر چیخیں نکل گئی, سارے مڑی دن حیران ہو. دیکھیں کیسا ذہن میں واقعہ میں آپ کو سنا, آسانی کیا آ گیا ذہن میں. تو کہنے لگے حسد یہ کیا ہوا, بول رہا تھا اور آپ سونے کیوں لگے؟ یہ تو شرابی ہے, اس کی بات پہ آپ کو کیا؟ ہاں شرابی ہے. پہلی دفعہ جس نے مجھے پکارا تو اس نے مجھ سے سوال کیا تھا جو تم نے نہیں سنا. کیا سوال کیا تھا؟ تو اس نے کہا تھا عبد القادر کہ اللہ مجھے معاف کر سکتا ہے؟ تو میں نے کہا ہاں کر سکتا ہے, اللہ کرم کرنے والا. پھر اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے جہنم سے نکال دے گا؟ پھر میں اللہ بڑا کرم کرنے والا, نکال دے گا. پھر اس نے مجھ سے کہا کہ عبد القادر کیا میں تیرے جیسا بن سکتا ہوں؟ سبحان اللہ, کتنے بڑی بات کی ہے. یہ شہابی بیٹھا ہے اور اتنے بڑے ولی کو کہہ رہا ہے کیا میں تیرے جیسا ہو سکتا ہوں؟ کوئی غصہ نہیں کیا, انہوں نے کوئی ناراضگی ظاہر نہیں کیا. کیا کہتے ہیں کہ اللہ بڑا قادر ہے, میرا شکر ہے, اس جیسے کیوں نہیں کر سکتے, میرے میں کیا خوبی ہے, میں کیا ہوں, تو بالکل میرے جیسا ہو سکتا ہے. کہتا جب تس نے تیسری, اے عبد القادر, تیسری دفعہ نے کیا کہا؟ تیسری دفعہ نے کہا کہ کیا تو میرے جیسا ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر, کہ یہ بھی ممکن ہے کہ جو میں شراب پی رہا ہوں تو شراب پی رہا ہو, اور جسے تو بنایا بزرگ تو میں بزرگ بنوں, کیا ممکن ہے؟ تو اس پر یعنی احساس ہو گیا, بات سمجھے میری, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتے ہیں. کل یہ نہ ہو کہ عبد القادر یہ بن جائے, تو پھرو کر ایک دم کر برا اس کو اٹھاؤ, اس کو اب مجھے بتائیں جس کا انہوں نے دعویٰ کیا تھا عاجزی کا, ثبوت ملا عاجزی کا کتنا زبردست؟ کہیں تکبر تھا عبد القادر جیلانی میں؟ کہیں بزرگی کا خیال تھا؟ حالانکہ کس مقام کے بزرگ تھے آپ, اس کے تو خیال من کو کیا بیان کروں میں آپ سے, کیا درجہ تھا, کیا کیا زیارتیں نبی پاس, سب کچھ تھا ان کے پاس, مشاہدات, گفتگویں, لیکن عاجزی دیکھیں اور اپنے کم ترین اپنے آپ کو سمجھنا کتنا دیکھیں, وہ ڈر گئے کہ میں یہ نہ بن جاؤں اور رونا شروع کر دیا اللہ کا ذکر. تو میرے بھائی جب تک عاجزی انسان کے اندر نہیں آتی وہ آگے نہیں بڑھتا. یہ ساری صفات جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ساری باطنی صفات ہیں.
یہ ساری باتیں سے بات
ہے. یہی یہ چیز ہے جس کو ملتی ہیں کہاں سے؟ اللہ والوں کے صحبت سے ملتی ہے. کسی کتاب میں ہے ہی نہیں, ڈائریکٹ مل نہیں سکتی ہیں آپ کسی جگہ. آپ حاصل نہیں, میں کہوں میں آج میں پیدا کرنے کے لیے یہ کتاب پڑھ لوں, فلاں کتاب پڑھ لوں, یہ چیز کر لوں, اتنا کر لوں, کبھی نہیں ہوں. ہو ہی نہیں سکتا. یہ ساری چیزیں جو اللہ نے رکھی ہیں کس میں رکھی ہیں؟ اصلاح باطن جو رکھی ہیں یہ صحبت کے اندر اللہ پاک نے. بغیر میں بھی تھک گیا الحمد للہ, باتیں بہت پیاری تھیں. اللہ تعالیٰ دعا فرمائے. مختصی میں پھر ایک دفعہ بیان کر دوں, شاید باتیں ہو گئی نا, کبھی شیطان پھر بلا دیتا ہے. پھر ایک گفتگو آغاز جو تھا وہ آج گناہ کے اوپر تھا کہ سب سے خطرناک چیز کیا ہے؟ گناہ ہے. وہ اس کے بارے میں ہم کبھی نہیں سوچتے, فکر بھی نہیں کرتے, خیال بھی نہیں کرتے, اور بڑے آرام سے ہم گناہ کرتے رہتے ہیں. اور ایک چیز کے ساتھ یہ چھوٹا ہے, اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ میں یہ جو کر رہا ہوں, میں یہ جو کر رہا ہوں بھائی, یہ کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی. میں نے بتا دیا آپ کو گناہ کی, کیونکہ گناہ کے ڈائریکٹ جو نتیجہ ہے وہ کیا ہے؟ غضب الہی ہے, بس اور کچھ نہیں اس کا. جس وقت نفس آپ کو لے جائے گناہ کی طرف کرنے لگے تو فوراً سمجھیں کہ غضب الہی آ گیا, بس یہ وقت ختم کر دیا. غضب آ گیا اللہ تعالیٰ کا, اور سات پشتوں تک کرنا گیا, اسی وقت کریں اور فوراً اس کا علاج کیا ہے؟ استغفار کر دیا. یہ آپ اس وقت اس سٹیج میں آئیں گے یہ کرنے کے لیے جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے, تو نہیں یہ سٹیج ملے گی نہیں آپ کو. یاد رکھیں یہ سب میں نصیحت کر رہا ہوں. وہ لوگ جو ذکر نہیں کرتے میرے اس کہنے سے یہ کام کریں گے نہیں کبھی بھی, ان کو وسا وسا آ گیا بچ گئے اور ذکر توبہ کر لی, کبھی نہیں ہوگا. گناہ چلتا رہے گا, وہ جس طرح بتائیں سٹیج پہ چلتے رہے. اس کے لیے لازم ہے کہ کسی اللہ والے کی صحبت اختیار کرو, اور فوراً اللہ کا ذکر سیکھو, اور ذکر کل بھی سیکھو. تصویر والا نہیں, کل بھی ذکر سیکھو. پھر ایک نہیں ہے الحمدللہ, وہ آپ کو کافی ذکر دے. اس کا کام یہی ہے. شاید رکھو جب کسی اللہ والے کو بچاؤ تو دادا کی سوچ جاؤ کہ واحد اس شخص کا کام یہی ہے کہ اس نے مجھے اللہ سے ملانا ہے. اب جو کچھ بھی کہے گا میں اس کے ہاتھ میں ہوں, مجھے کہ یہ کر فلاں, میں کرتے ہی چلا جاؤں گا, میں رکنا نہیں. اور کامیابی وہی انسان ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پہ کامیاب کرے. زندگی کی جو چند لمحات دیے اور سمجھ دیے اس پہ چلنے کے, اللہ پاک ہمیں توفیق نصیب. واخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. درود شریف پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین شفیع المرسلین. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد, صل علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم, سلم تسلیما دائما. اللہم اغفر لنا ذنوبنا وسلمنا وحسلنا وجدنا وقطعنا مدنا كل ذلك. اللہم اغفر لنا ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وانت اعلم بما قدمت انت المؤخر ولا اله الا انت. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا, ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا, ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به, واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين نبيهم صدقين شهداء حسنى اولئك نبيك. اللهم استغفرنا بسنته ونفعنا بمحبته واشرنا في سمرته يا كريم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللهم ثبتنا على الايمان وامتنا على الايمان واشرنا يوم القيامه مع الايمان. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. يا الله ہمارے دلوں میں سکون عطا فرما, يا الله ہمیں ہدایت نصیب فرما, يا الله ہمیں سیدھے راستے پہ چلا, يا الله ہمارے وساوسوں کو دور فرما, يا الله ہمیں وساوسوں کو دور فرما, يا الله ہمارے خواہشات کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے. اے میرے مولا تو ہماری مدد فرما, يا الله تو ہماری مدد فرما, یا اللہ تو ہماری مدد فرما. یا اللہ جہنم کی آگ سے بچا لے, اپنی ناراضگیوں سے بچا لے, دوزخ کے عذاب سے بچا لے, قبر کے عذاب سے بچا لے. یا اللہ یہ دنیا بھی ہماری آسان کر دے, آخرت بھی آسان فرما دے. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا, یا کریم تو ہم سے راضی ہو جا, یا
یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا, یا اللہ اپنے حبیب کو بھی راضی فرما دے, اے میرا مولا جنت میں اعلیٰ درجات نصیب فرما دے, جنت کے انعامات نصیب فرما دے, اے میرا مولا اپنے فضل و کرم سے اپنے رحم سے میرے مولا نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما, میرے مولا تلاوت قرآن نصیب فرما, قرآن پہ تدبر نصیب فرما, قرآن سے انس نصیب فرما, قرآن سے محبت نصیب فرما, قرآن ہمارا اوڑھنا کر دے بچھونا کر دے میرا مولا, یا اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, دل کا قرار بنا, ربیع قلب بنا, آنکھوں کی ٹھنڈک بنا, یا اللہ ہماری ہدایت کا ذریعہ اس قرآن کو بنا دے, اے میرے مولا ایک ایک لفظ ہماری ہدایت کا ذریعہ بنا دے, ہمارے دل میں اس کی محبت اتار دے, اس کی عظمت اتار دے, اس کی قدر ہمارے دل میں اتار دے میرے مولا, یا کریم تو اپنے فضل کرم سے ہماری اس دعاؤں کو قبول فرما, اے میرے مولا ہماری دعاؤں کو قبول فرما, ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما, یا اللہ ہمارے لواحقین کی بخشش فرما, ہمارے مرحومین کی بخشش فرما, ہمارے رشتہ داروں کی بخشش فرما, پوری امت کی بخشش فرما, یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما لے, یا اللہ جن کے دلوں کے اندر قرار ان قرار نصیب فرما, یا اللہ ان کے ذہنوں کو سکون عطا فرما, ان کے گھروں میں سکون نصیب فرما, میرے مولا ان کو ہدایت نصیب فرما, اے میرے مولا جو بیمار ہیں جنہوں اپنے شفا کے لیے کیا میرے مولا ان شفا کلی نصیب فرما, ہر بیماری موذی مرض سے ان کو میرے مولا نجات نصیب فرما, یا رحیم اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب کے صدقے سے میرے مولا تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما, وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین, سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون, وسلام علی المرسلین, والحمد للہ رب العالمین, آمین.